पंचास्तिकाय संग्रह लेक्चर नंबर 10 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणं इन्द्रसदवंदियाणं त्रिभुवनहितमधुरविशद्वक्त्राणं अन्तादीतगुणाणं नमो दिनानं जिदभवानं। ये पंचास्तिकाय संग्रह नामक जो शास्त्र है, जो कुंदकुंद आचार्य ने करीबन 2000 वर्ष पूर्व इसकी रचना की है, उसको देखते हुए हम पांचवी गाथा को देख रहे थे और हम पृष्ठ क्रमांक 37 पे आए हैं। यहाँ अपनी बात यह चल रही थी कि जीव चाहे जितनी छोटी बड़ी अवगाना क्यों न ले, उसमें जो प्रदेश है यानी उसका जो आकार है वह तो असंख्यात प्रदेश ही, उसका क्षेत्र जिसको हम कहेंगे असंख्यात प्रदेश ही रहेगा, लेकिन वो कीड़ी का आकार ले वे या हाथी का आकार ले वे तो असंख्यात प्रदेशों की संख्या में कुछ वधघट नहीं होती है, लेकिन ये प्रदेश आत्मा के प्रदेश एक दूसरे को अवगाना देते हैं, वह अवगाना दे के कम क्षेत्र को रोकेंगे तो उसको संकोच कहेंगे, और अवगाना एक दूसरे के अवगाना छोड़कर विविध अवगाना से बड़ा रूप लेंगे तो उसको कहेंगे विस्तार। और ये संकोच विस्तारत्व शक्ति नाम की जो 47 शक्ति है उसमें से ये एक शक्ति है।
नहीं नहीं,
असंकुचित विकास होता है, संकोच विस्तार नहीं, असंकुचित विकास होता है,
यानी प्रत्येक प्रदेशत्व वाली उसमें है। असंकुचित विकासत्व शक्ति बताती कि प्रत्येक गुण का विकास जो है वो अमर्यादित होता है, वो जुदा है, वो प्रदेशों से कोई लेना देना नहीं। ये संकोच और विस्तार होना ये तो संसारी अवस्था में होता है, क्योंकि सिद्ध होने के बाद वो संकोच विकार कुछ नहीं है, जो अंतिम जो है देह प्रमाण उतना ही रहता है, योग गुण के कारण नहीं होता है। योग गुण का उसका है तो उसका निष्कंप अवस्था होती है योग गुण, संसारी अवस्था में संस्थान नाम कर्म के कारण होता है, वो कोई शक्ति नहीं, उसकी गुण नहीं है उसका, क्योंकि गुण होता तो सिद्धों में भी होना चाहिए ना। मैंने ये कहा कि जो संकोच और विस्तार होता है, संकोच विकोच भी कहते हैं उसको, तो ये तो जैसे जिस देह को धारण करता है यानी जो संस्थान नाम कर्म के उदय से, वैसे वो तो संस्थान में तो आकार की बात है, और यहाँ तो अवगाहना उसमें ही आ जाता है, उसकी अवगाहना कितने कितना क्षेत्र उसने रोका, आकाश का कितना क्षेत्र रोका, तो कहते वो तो उसको हम कहेंगे अवगाहना जीव की। वो छोटी बड़ी हो सकती, जैसे चींटी हुआ या हाथी हुआ, तो चींटी में उसके प्रदेश क्या संकुचित होकर छोटे क्षेत्र में उतने ही प्रदेश आ गए, रोक लिए, और वे प्रदेश कुछ बढ़ नहीं जाते हैं, ना प्रदेशों का आकार बढ़ता है, प्रदेश एक दूसरे से ऐसे छुट्टे होकर अधिक क्षेत्र में व्याप्त है, हाथी हो गया, प्रदेशों की संख्या उतनी ही रही और एक एक प्रदेश का साइज भी उतना रहा, बिल्कुल उसी को प्रदेश कहेंगे, छोटे में छोटा साइज है, तो क्या हुआ वो एक दूसरे में ऐसे सुपर इम्पोज हम कहेंगे, क्योंकि ये रुमाल भी कहते थे उसके फोल्ड होते तो थोड़ी उसकी थिकनेस बढ़ती,
लेयर बढ़ता
है, पर ये जरूरी नहीं है एक ही आकाश के प्रदेश में उसके अनेक प्रदेश समा जाते हैं, और फिर वो प्रदेशों का क्रम का भंग नहीं होता। जैसे रुमाल है और आपने उसका हाथ में मुट्ठी में बंद कर दिया, तो उसके तंतुओं का कुछ क्रम तो नहीं बदलता, वैसा का वैसा रहता है। ऐसे आत्मा के जो है उसके प्रदेशों का क्रम नहीं बदलता।
ये बात हमने कल तक देखी थी, आज 37 नंबर के पृष्ठ पर हम तीसरे लाइन से चालू करते जहाँ नया पैराग्राफ शुरू होता है। जीव मां असंख्य प्रदेशो न हो तो कीड़ी ने हाथी ना शरीर प्रमाणे तेनो संकोच विकास न थई शके, अने अनंत गुणों में समय समय परिणमन न थतु हो तो ज्ञान वगैरह में हीन अधिकता न थई शके। माटे असंख्य प्रदेशी अने अनंत गुणों ना परिणमन वालो जीवनो अस्थिकाय स्वभाव छे। दो स्वभाव बताया, एक तो असंख्य प्रदेशी और अनंत गुणों ना परिणमन वालो, परिणमन भी होता है उसका, उसको अस्थिकाय स्वभाव बताया। संसारी ने जे संकोच विकास थाय छे ते तेना असंख्य प्रदेशी अस्थिकाय ना परिणमन नी योग्यता छे। नाम कर्म नो तेना तेमा अभाव छे, एटले नाम कर्म ने लईने आत्मा मां संकोच विस्तार थाय एम नथी।
निमित्त से नहीं होता है ना,
क्या उनका क्या कहना था?
अभी तो संसार नाम कर्म कहा था, तो निमित्त होने पर भी निमित्त ने लईने नथी थतो। जैसे हम कहें शिष्य ने गुरु ने लईने ज्ञान नथी थतो, एवी रीते
सिद्धमां तेवी संकोच विस्तारनी योग्यता नथी, माटे संकोच विस्तार थतो नथी। संकोच विस्तार ते जीवना अस्थिकायमां थाय छे। जीवना अस्तित्वमां कर्मने तो याद पण नथी कर्या, कर्मने तो पुद्गलना अस्थिकायमां समाव्या छे। ए ज प्रमाणे विकार थाय ते पण पोताना अस्थिकायनुं परिणमन छे, ते कर्मने लीधे नथी। जीवना अस्थिकायने समझे તેમાં આ બધું આવી જાય છે કે કર્મ બીજો હૈ ને વો નિમિત્ત રૂપ સે હૈ, કર્મ ઉસકો નહીં પલટાતે હૈ, એસા બતાના ચાહતે હૈ। અહો તું તારા અસ્તિત્વમાં તને જો, પરનો પ્રકાશક તો વ્યવહારે છે, સ્વપ્રકાશક ભેગું પરપ્રકાશક સામર્થ્ય પણ આવી જાય છે। અહો સર્વજ્ઞનું કથન જ એવું છે કે કોઈ પણ કથન લ્યો तो बधु साबित थी जाए। वस्तु छे एम कहता तेमाती सर्वज्ञता उभी थाय छे। मारो आत्मा असंख्य प्रदेशी अनंत गुणवाड़ो अस्थिकाय छे, एम ज्यां परती जुदु अस्तित्व नक्की कर्यूं त्यां परलक्ष छूटी ने पोताना अनंत ज्ञानानंद स्वभावनी प्रतीत एटले श्रद्धा थई तेज प्रयोजन छे। जैसे आचार्य देव आ गाथानो भावार्थ जनावता कहे छे के तत्र शुद्ध जीवास्तिकायस्य यानंत ज्ञानादि गुणसत्ता सिद्ध पर्याय सत्ता च शुद्ध संख्यात प्रदेश शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूपम कायत्वम उपादेयम इति भावार्थः। अभी उसका अर्थ बताते, जे पंचास्तिकाय छे तेमा अनंत ज्ञानादि गुणसत्ता तेमज सिद्ध पर्याय सत्ता सहित शुद्ध जीवास्तिकायनु जे असंख्यात प्रदेश रूप कायत्व छे ते उपादेय छे एवो भावार्थ छे। अहो सिद्ध भगवान जेवो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावे अस्तित्व माळो मारो आत्मा ज मारे उपादेय छे। उपादेय ने प्रकट करने योग्य, ग्रहण करने योग्य उपादेय का अर्थ,
यानी उसी को जानते रहना।
क्या कहते हैं, सिद्ध भगवान जेवो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावे अस्तित्व वाळो मारो आत्मा ज मारे उपादेय छे, ते सिवाय जगत में बीजू मारे काई उपादेय नथी। आम समझू ते आ गाथानो सार छे। सर्वज्ञ भगवाने कहेला छ द्रव्यनु यथार्थ ज्ञान करवू ते सम्यक ज्ञान छे। छ द्रव्यो ते अर्थ समय छे, तेने जाणनारू ज्ञान ते ज्ञान समय छे, ने तेने कहनारी वाणी ते शब्द समय छे। एम ये तो हमने अभी पढ़ा था पहले, એમ ત્રણ પ્રકાર દરેક પદાર્થમાં પડે છે તેનું વર્ણન આગળ આવી ગયું છે, આગળ અને પહેલા આવી ગયું છે. ભાવ ધ્યાન પૂર્વક રાગ દ્વેષ મોહ રહિત પુરુષના જે વચનો નીકળે તેને જ શબ્દ સમય કહેવાય છે. એને સમ્યક દ્રષ્ટિ કે શબ્દો કોઈ શબ્દ સમય કહેંગે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ કે નહીં. અજ્ઞાનીના વચનો રાગ દ્વેષ મોહ સહિત છે તે શબ્દ સમય કહેવાતા નથી. ક્લિયર કટ કર દિયા. રાગ દ્વેષ મોહ રહિત જે સમ્યક જ્ઞાન થયું તે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન છે, તેને જ્ઞાન સમય કહે છે. જેવા જ્ઞાનીના વચનો હોય તેવા જ અજ્ઞાનીના મુક્તિ વચન નીકળે તો પણ તે શબ્દ સમય કહેવાતા નથી, કેમ કે તે જીવ રાગ દ્વેષ મોહ રહિત નથી. કહેનાર કેવા હોય તે પણ આમાં આવી જાય છે. કહેનાર પોતે રાગ દ્વેષ મોહ રહિત હોય ને તેના વચનોમાં પણ રાગ દ્વેષ મોહનું સ્થાપન ન હોય, પણ વિતરાગતાનું જ સ્થાપન હોય. અજ્ઞાનીની વાણી દેશના લબ્ધિનું કારણ ન થાય તે વાત પણ આમાં આવી જાય છે. એને જો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ હોગા ઉસકે હી વાણી મેં શબ્દ સમય કહેને મેં આયેગા, તો ઉસકા જો કથન હોગા વો તો દેશના તરીકે સે ઉપયોગ મેં આયેગા. વ્યવહારથી રાગથી ધર્મ થાય એમ સ્થાપન કરે તો તે શબ્દ સમય નથી. સાકર શબ્દ કહેનારના ખ્યાલમાં સાકર હોવી જોઈએ, તેમ જેને પદાર્થનું સાચું જ્ઞાન હોય તેવી જ વાણીને શબ્દ સમય કહેવાય. જેને પદાર્થના સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તેને વાણીને શબ્દ સમય કહેવાય નહીં, એટલે જ્ઞાન સમય પૂર્વક જ શબ્દ સમય હોય છે. પુરુષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણે તે વાત સિદ્ધ કરી છે. ત્રીજી ગાથામાં આ વાત વિસ્તારથી આવી ગઈ છે. પહેલી ગાથામાં મંગળાચરણ કર્યું છે. બીજી ગાથામાં ભગવાનના શ્રીમુખેથી નીકળેલા પંચાસ્તિકાએ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. ત્રીજી ગાથામાં જીને જીનવરે પ્રરૂપેલા એમ કહ્યું છે. તેમાંથી એ વાત કાઢી કે રાગ દ્વેષ મોહરહિત પુરુષ કહેનાર હોય તેની વાણીને જ પંચાસ્તિકા શબ્દ સમય કહેવાય છે. યે સબ હો ગયા અપના ઇસલે મેં પઢ રહા હું. પંચાસ્તિકામાં એક દ્રવ્યને લીધે બીજા દ્રવ્યનું કંઈ થાય એમ કોઈ કહે તો તે વાણી વાચ્યને ઓળખનારી નથી. વાચ્યને જિસકે બારે મેં બતાયા જા રહા હૈ વો વાચ્ય, યાને ઉસકા કથન સહી નહીં હૈ એસા બતા રહે. પદાર્થનું સ્વરૂપ તેવું નથી માટે તે વાણી શબ્દ સમય નથી. છ દ્રવ્યો પોતપોતાના ગુણપર્યાય સહિત સ્વતંત્ર વર્તી રહ્યા છે એવા વસ્તુ સ્વભાવનું સ્થાપન કરે છે. એ કોણ સા દ્રવ્ય આપને આપને ગુણપર્યાય સહિત પ્રવર્તન કરતા હૈ? છ દ્રવ્ય યાને યે પુદગલ જો દ્રવ્ય હૈ ઇસકા પરિણમન ઉસસે હો રહા હૈ મેરે સે નહીં, તો યે મેને ઉઠાયા એસા હમ માનતે હૈ લેકિન એસા બિલકુલ નહીં હૈ. ઇસમે જો ક્રિયાવતી શક્તિ હૈ વો ઉસ કારણ સે યહાં ગઈ ફિર વાપસ યહાં આઈ, ઓર હમને માના કે હમને એસા ઉઠા કે દિખાયા તભી તો આપણે દેખા, નહીં તો એસા કૈસા હોતા થા. તો કહેતે કે છ દ્રવ્ય મેં અપના અપના પરિણમન કરને કી શક્તિ હૈ, તો રોટી કોણ બનાયેગા? મેં નહીં બનાવી બિલકુલ. અચ્છા એસી વાત નહીં હૈ, યે જો બાત હૈ યે પહેલે તો શ્રદ્ધા મેં લેની હૈ. યે બાત જો આપણ તત્વ કી બાત પડતે વો શ્રદ્ધા મેં લેની હૈ. રોટી બનાયેંગે આપ લેકિન વો બનાતે વખત ભી એસા મન મેં હોગા કે યે બનાને વાલી મેં નહીં હું, ये जो बन रही है उसकी मैं ज्ञाता हूं. ख्याल में है ना? इसलिए क्या कहते हैं, छह द्रव्यों पोत पोताना गुण पर्याय सहित स्वतंत्र वर्ती रहा छे एवा वस्तु स्वभाव नु स्थापन करे तेने जे द्रव्य शुद्ध कहवाय. यानी द्रव्य श्रुति यानी जो आगम है उसको ही कहे कि जो सत्य बात बताते हैं। द्रव्य श्रुत एटले शब्द समय ने भाव श्रुत एटले ज्ञान समय पदार्थ नु यथार्थ ज्ञान थवुं ते भाव श्रुत ज्ञान छे तेने भाव आगम कहेवाय छे। द्रव्यागम ते शब्द अने भावागम ते ज्ञान। द्रव्यागम ते जड़नी पर्याय छे ने भावागम ते ज्ञाननी निर्दोष पर्याय छे। सम्यक ज्ञान रूप भाव श्रुत ज्ञान तारा पंचास्तिकाय स्वरूप जणाय छे ने पदार्थों ने अर्थ समय कहे छे। एम त्रण प्रकारना समयनु वर्णन त्रीजी गाथामां कर्युं छे। देवगुरु शास्त्र सम्यक ज्ञान द्वारा जणाय छे पण देवगुरु शास्त्र द्वारा सम्यक ज्ञान थाय एम नथी। तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र थे तो होगा कि नहीं? तो सच्चे देवगुरु शास्त्र थे सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं? तो कैसे होगा? अपने स्वयं के कारण से। मेरा जो उपयोग बाहर में भटक रहा है वो मैं अपने स्व में लगाऊं मैं खुद, तो मुझे अपना स्व का अनुभव होगा। यहाँ क्या कह रहे देखो, देव गुरु शास्त्र सम्यक ज्ञान द्वारा जणाय छे पण देव गुरु शास्त्र द्वारा सम्यक ज्ञान थाय एम नथी। यानी देखो, जो देव भी नहीं कर सकता है, ऐसे यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में लोग हैं कि वो सम्यक दर्शन दिलाते हैं। कि आपने कितना लेक्चर अटेंड किया? बोलो पांच। चलो आपको पांचवें गुणस्थान में, ऐसा मालूम है कि नहीं तुमको? बात ऐसी है कि यहाँ तो जो सत्य बात है वो समझाते तो ऐसा लगता है कि क्या बात है। पहले तो एक बात नक्की है कि खोटा देव यानी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र थे तो सम्यक दर्शन वो निमित्त रूप भी हो नहीं सकता है। वो तो करके देवे वो तो बात ही नहीं है, लेकिन सच्चे देव गुरु शास्त्र भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि परद्रव्य है। और यहाँ जो कुछ परिणमन हो रहा है वो मेरे स्वयं के योग्यता से हो रहा है और मैं मेरे में मेरे से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकूंगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा। ऐसी जब खातरी होती है तो पर के तरफ ऐसे आशा से, भय से, स्नेह से देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, कौन उसको पलट सकता है? अगर पलटाना होता तो खुद जिनेंद्र भगवान भी पलटा सकते थे कि नहीं? वो भी नहीं पलटा सकते। देखो ना, हमने देखा ना कि आदिनाथ भगवान के बेटे का बेटा महावीर मारीची, बरोबर मारीची, वही आगे जाके महावीर बने। तो उनको तो 24वां तीर्थंकर, अगर उनकी चलती तो दूसरा तीर्थंकर नहीं बनाते क्या? वो भी नहीं बना सके। और हम दूसरों की मेहरबानी चाहते हैं, उनकी दया चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, यही बात बता रहे हैं। बहुत अच्छा समझे। देखो फिर से वही लाइन पढ़ता हूँ मैं। देव गुरु शास्त्र सम्यक ज्ञान द्वारा जणाय छे, यानी अपने को सम्यक ज्ञान हुआ तो सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र जानने में आता है। परंतु पण देव गुरु शास्त्र द्वारा सम्यक ज्ञान थाय एम नथी। अर्थ समय में तो आत्मा अने पर बधाए पदार्थो आवी जाय छे ज्ञान द्वारा। ज्ञान द्वारा जे पधाए पदार्थो जणाय छे, ज्ञान द्वारा राग जणाय छे, ते राग अर्थ समय में जाय छे ने तेने जाननारू ज्ञान ते ज्ञान समय छे। रागना अवलंबन विना स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वालू जे ज्ञाननु परिणमन छे ते भाव आगम छे ने तेवा ज्ञानीनी राग द्वेष मोह रहित वाणी ते द्रव्य आगम छे। अभी चौथी गाथा में क्या बताए वो बात बता रहे। चौथी गाथा में पांच अस्थिकाय पदार्थना नाम कया अने तेमना अस्तित्वनु वर्णन कर्यू। पांचमी गाथा में अस्थिकाय कोने कहे ते बताए वो। अस्थिकाय किसको कहना, कैसा मतलब कैसा किसी को कहना हो तो क्यों कहना अस्थिकाय, आप बताएंगे ब्रह्मा बेन? असंख्यात नहीं, बहुप्रदेशी, उसको हम अस्तिकाय कहें। अस्थि कहें,
अस्थि क्यों कहेंगे, उत्पाद वेद रहो अपने अस्तित्व में जो रहता है वो अस्थि,
और आप कायत्व बता रहे हैं,
बहुप्रदेशत्व।
तो देखो पांचवें गाथा में अस्तिकाय कोने कहे छे बतायू, ते पांच गाथा तो अगाऊ वंचाई गई छे, हवे छठी गाथा में पांच अस्तिकाय ने तेमज काल ने द्रव्य संज्ञा छे, संज्ञा कहे छे।
जरा खाली है माइक।
अभी श्लोक पढ़ना है।
ते चेव अस्तिकाया ते कालीय भाव परिणदानि च गच्छन्ति द्रव्य भावं पर्यटन लिंग संयुक्ता ते चैवास्तिकाया त्रैकालिक भाव परिणतानि च गच्छन्ति द्रव्य भावं परिवर्तन लिंग संयुक्ता ते अस्तिकाय त्रिकाल भावे परिणमे छे नित्य छे हे पांच तेम काल वर्तन लिंग सर्वे द्रव्य छे।
अन्वय अर्थ त्रैकालिक भाव परिणता हा जे त्रण कारणा भाव रूपे परिणमे छे तेमज नित्याः नित्य छे तेज एव अस्तिकायाः एवा तेज अस्तिकायो परिवर्तन लिंग संयुक्ताः परिवर्तन लिंग एटले काल सहित छे काल सहित द्रव्य भावम गच्छन्ति द्रव्यपनाने पामे छे अर्थात ते छे द्रव्यो छे। જે ત્રણ કારણના ભાવ રૂપે પરિણમે છે યાને જિનકા પરિણમન તીનો કાલ ચલતા હૈ ત્રણ કારણના ભાવ રૂપે હૈ ભાવ રૂપે ને સત્તા સ્વરૂપ હૈ 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 પરિણમતે હૈ
યાને પરિણમે પણ છે અને નિત્ય પણ છે એવું।
अभी केवल संस्कृत गुजराती पढ़ता हूँ। जे त्रण कारणा भाव रूपे परिणमे छे तेमज नित्य छे यानी देखो क्या बताया उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम जैसा बताया कि वो परिणमता भी है और नित्य भी है। जे त्रण कारणा भाव रूपे परिणमे छे तेमज नित्य छे एवा तेज अस्तिकायो परिवर्तन लिंग एटले काल सहित द्रव्यपना ने पामे छे अर्थात ते छय द्रव्यो छे पांच अस्तिकाय वाले और काल द्रव्य।
अभी यहाँ जयसेन आचार्य की टीका में से कुछ पढ़ते देखो।
हाँ
पहले में पहले उनको एक वाक्य छोड़ दो गाथा त्रय पर्यंत वगैरह कौन सी गाथा में क्या विषय आता वो बताते अब आगे बताते अथ पंचास्तिकाया नाम कालस्य च द्रव्य संज्ञाम कथयति यानी पांच अस्थिकायों को और काल को द्रव्य ये नाम है ये बता रहे यानी वो छह द्रव्य है ये बात यहाँ बता रहे। ते चेव अस्थिकाया तिक्कालीय भाव परिणदा नीचा ते चैव ते ने जो पूर्व बताए हुए पूर्वोक्ता हा पंचास्थिकाया हा यद्यपि अभी आपके जो प्रश्न है ना परिणमते फिर नित्य कैसे कहा तो यद्यपि यानी जो कि यानी यद्यपि पर्यायार्थिक नयन त्रैकालिक भाव परिणता त्रिकाल विषय पर्याय परिणता संत त्रैकालिक भाव परिणत का ही अर्थ क्या होता है त्रिकाल में त्रिकाल विषय पर्याय पर्याय यानी त्रिकाल में पर्याय रूप से परिणमते रहते हैं यानी हमेशा कायम भूतकाल में भी वर्तमान में भी भविष्य में भी परिणमेंगे ऐसे होने पर क्षणिक वो क्षणिक है अनित्या है विनश्वना है भवन्ति तथापि पर्याय की अपेक्षा से ऐसे है तथापि द्रव्यार्थिक नयन नित्या एव एव यानी है ही लगाया कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य ही है परिणमते हुए भी वो नित्य ही है। हाँ हाँ यानी द्रव्य द्रव्य परिणमते हैं वो पर्यायार्थिक ने कहा, और कहते वो नित्य है वो द्रव्यार्थिक ने कहा। एवं इस प्रकार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयाभ्याम नित्यानित्यात्मका संतः, यानी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों में वो नित्य और अनित्य रूप होते हुए गच्छन्ति दवीय भावम द्रव्य भावम गच्छन्ति, उसी को द्रव्य संज्ञा देंगे। अगर परिणाम नहीं गया नहीं तो उसको द्रव्य भी नहीं कहेंगे। क्या नहीं है? द्रव्य का लक्षण ही क्या है, वो कायम रहते हुए अनित्यता यानी वो उसका परिणामना स्वभाव है। यानी द्रव्य संज्ञा लभन्ते, यानी द्रव्य संज्ञा उनको प्राप्त होती है। पुनरूपी कथम भूता संतः, और कैसे है वो, तो कहते पर्यटन लिंग संयुक्ता परिवर्तनम एव जीव पुद्गलादि परिणमनम एव अग्ने हे धूमवत कार्यभूतम लिंगम यानी चिन्हम यानी गमकम यानी ज्ञापकम यानी सूचनम यस्य स भवति परिवर्तन लिंगः कालाणु द्रव्य काल तेन संयुक्ता। क्या कहना चाहते हैं? जीव और पुद्गलों का परिणमन ख्याल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो कहते हैं कि उसके कारण जहां धुआं दिखाई देता है वहां अग्नि है ऐसा हम नक्की करते हैं, वो उसका चिन्ह है लिंग है। ऐसे जीव और पुद्गलों का परिणमन हो रहा है तो वो क्या बताता है कि परिणमन हेतुत्व ऐसा वहां कोई कोई होना चाहिए जो क्या है तो काल द्रव्य है। फिर से देखो यहाँ,
यानी जो कार्य हो रहा है उसका निमित्त तो होना चाहिए।
कार्य का लिंग जो है वहाँ वो कार्य कार्य के लिए कारण को ही विद्यमान है वहाँ पर, तो उसका जो चिन्ह है उसका गमक यानी उसको बताने वाला है उसका ज्ञापक है उसके सूचना जो देता है यस्य स भवति परिवर्तन लिंग किसको कहा कालाणु को जिसका दूसरा नाम है द्रव्य काल। द्रव्य काल का अर्थ क्या है? काल द्रव्य। द्रव्य काल और दूसरा कोई होता है क्या? तो कहते व्यवहार काल होता है जो हम समय गिनते, इतना समय बीत गया, एक घंटा बीत गया, दो घंटे बीत गए, आपको ट्रैफिक में आने में डेढ़ घंटा दो घंटे लगे, तो ये समय जो बीत गया काल उसको कहेंगे व्यवहार काल। जो हम समय है आवली है क्षण है जो सेकंड है मिनट घंटे सागर जो कोई नापते हैं वो सारा व्यवहार काल है, परंतु वहाँ द्रव्य कौन सा है तो उसको कहेंगे द्रव्य काल कहो काल द्रव्य कहो, वो निश्चय काल है। निश्चय काल के बिना व्यवहार काल नहीं पाया जाता, इसलिए काल द्रव्य की भी सिद्धि है यही कह रहे हैं यहाँ पर।
देखो अपन दूसरी भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी कार्य घटन होता है तो उसको दो कारण लगते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो यहाँ अपने को जो जीव और पुद्गल द्रव्य में परिणमन होते हुए ख्याल में आता है तो उसके अपने उपादान से उसका परिणमन हो रहा है, वहाँ काल द्रव्य निमित्त है।
यहाँ प्रश्न पूछते हैं, ननु काल द्रव्य संयुक्ता इति वक्तव्यम परिवर्तन लिंग संयुक्ता इति अव्यक्त वचनम किमर्थम इति, यानी खरेखर तो काल द्रव्य युक्त ऐसा ही बताना था ना, परिवर्तन लिंग से संयुक्त ऐसा अव्यक्त वचन क्यों कहा? काल का डायरेक्ट नाम लेते ना, काल का नाम नहीं लेते हुए उसको परिवर्तन लिंग संयुक्त ऐसा बताया तो ऐसा क्यों कहा? तो कहते न एवं, ऐसा नहीं है। पंचासी काय प्रकरणे कालस्य मुख्यता नास्ति, यहाँ प्रकरण क्या है हमारा पंचासी काय, काल द्रव्य है परंतु वहाँ उसकी मुख्यता नहीं, इसलिए पांच अस्थि कायों की अपेक्षा काल का वर्णन है। पांच अस्थि काय में क्या हो रहा है? उनका परिवर्तन हो रहा है, तो उसका परिवर्तन लिंग वो उसको वहाँ उस द्रव्य की भी विद्यमानता बताई गई। तो कहते कालस्य मुख्यता नास्ति, यानी काल की मुख्यता यहाँ नहीं है। इति पदार्थानां नवजीर्ण परिणति रूपेण कार्यालिंगेन ज्ञायते यतः कारणात् तेनैव कारणेन परिवर्तन लिंग इति उक्तम। क्या कहते हैं कि पदार्थों के ये नए है जीर्ण हुए है उनकी परिणति हुई है ये वहाँ कार्य पाया जाता है, और उसके उसी के कारण यानी वो कार्य से ये जाना जाता है कि जिस कारण से जाना जाता है उस कारण के लिए यहाँ परिवर्तन लिंग ऐसा बताया है। अत्र षट द्रव्येषु मध्ये यानी इन षट द्रव्यों में दृष्ट दृष्ट ने देखा हुआ, श्रुत सुना हुआ, अनुभूत क्या होते हैं आहार भय मैथुन परिग्रहादि संज्ञादि समस्त परद्रव्य आलंबनो उत्पन्न। क्या कहते हैं ये जो चार संज्ञाए नाम सुने हैं आप, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये चार संज्ञाएं हैं यानी वो कैसे उत्पन्न हुए, परद्रव्यों के आलंबन से उत्पन्न। संकल्प विकल्प शून्य शुद्ध जीवासिकाय श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप ये जयसेन आचार्य की विशेषता है। जीव को शुद्ध बताना है तो कहते वो पहले में जो विकल्प है उससे विरुद्ध ऐसा जीव का शुद्ध स्वरूप बताएंगे। तो षट द्रव्यों में से जो शुद्ध जीवासिकाय है उसका श्रद्धान उसका ज्ञान उसका अनुष्ठान यानी उसी में रमना चरना अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधि संजात यानी अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप जो निर्विकल्प समाधि है अंतरंग में स्थिरता निर्विकल्प समाधि है उससे संजात यानी उससे उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ वीतराग सहज अपूर्व परमानंद रूपेण। वीतराग सहज अपूर्व परमानंद जो है उस रूप से स्वसंवेदन ज्ञानेन स्वसंवेदन ज्ञान से गम्यम यानी स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा जो गम्य है जो प्राप्य है भरितावस्थम शुद्ध निश्चय नयन स्वकीय देहांतर्गतम जीव द्रव्यमेव उपादेयमिति भावार्था। हमेशा प्रत्येक गाथा का भावार्थ बताएंगे शुद्ध जीवासी का ही उपादेय उपादेय ने उसी का आश्रय करने योग्य है उसी को जानते रहने योग्य है। अब आप पढ़ेंगे ये समय व्याख्या का अनुवाद अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है उसको डायरेक्ट हिंदी और गुजराती में पढ़ेंगे भी
अनुवाद। अहीं पांच अस्तिकायों ने तथा काल ने द्रव्यपनु कहूं छे। द्रव्यों खरेखर सहभावी गुणों ने तथा क्रमभावी पर्यावरण ने अनन्यपने आधारभूत छे। इतना ही नहीं बताया कि गुण को और पर्यायों को आधारभूत है लेकिन वो कैसे हैं तो कहते हैं कि सहभावी है सहभावी यानी सहवर्ती है एट अ टाइम सारे गुण हैं लेकिन पर्याय कैसे एक समय में एक ही होती है एट अ टाइम सारी पर्याय नहीं होती एक के बाद इसलिए उसको क्रमवर्ती क्रमभावी समझे नहीं। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है आपने पुस्तक में देखना द्रव्यो खरेखर सहभागी सहभावी गुणों ने तथा क्रमभावी पर्यायों ने अनन्यपने आधारभूत छे। अनन्यपने એટલે ડેફિનેટલી એનો આધાર છે કોને
એકમેક છે અનન્યપણા ને એકમેક છે અન્યન્યપણા ને એસા નહી કે વો બર્તન મે કોઈ અંદર ડાલો ઓર બહાર નિકાલો ઉસકે સાથ વો અનન્ય હે એકમેક હે દ્રવ્ય ઓર ગુણ કૈસે અનન્યપણે ઉસકા આધાર હે આધાર તો કહેંગે હમ
દ્રવ્ય કો અપના ગુણોં કો ઓર પર્યાયોં કો દ્રવ્ય આધાર હે
એ ઉસના
લે લો યાને દૂસરા કોઈ આધાર નહી દ્રવ્ય હી આધાર હે। अब फिर गुण कैसे हैं तो कहते हैं सहभावी सहभावी यानी सहवर्ती सहवर्ती माने आपके पास प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण हैं अनंत तो पहला कौन सा सभी अनादि से है इसलिए कहने के लिए हम ज्ञान दर्शन आदि बोलेंगे लेकिन सभी जिस समय ज्ञान है उस समय दर्शन है उस समय यानी एट अ टाइम एक साथ रहने वाले ऐसे गुण सहभावी और क्रमभावी यानी क्रम से पर्याय कैसी थी आज एक है फिर दूसरे समय में दूसरी तीसरे समय में तीसरी ऐसी ये क्रमभावी है उसको क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं सहभावी गुण और क्रमवर्ती क्रमभावी पर्याय इनका आधारभूत कौन है तो द्रव्य है यानी अपनी भाषा में समझना है तो द्रव्य काहे से संबंधित है अपने गुण पर्याय उनसे संबंधित है जहाँ गुण पर्याय रहते हैं उसको द्रव्य कहेंगे गुण पर्यवत द्रव्यम, ऐसा बताया ना। लेकिन इन्होंने और ऐड किया, गुण कैसे है तो सहवर्ती है, सहभावी है, और पर्याय कैसे है तो क्रमभावी है। अर्थ तो एक है, उसको विशेषण जोड़ दिया।
देखो जैसे आप भोजन करने बैठे तो थाली में रोटी डाली, तो रोटी को आधार किसका है? थाली का है। वो रोटी थाली से जुदी है क्या थाली से एकमेक है? जुदी है। क्या ऐसे गुण और पर्याय द्रव्य से जुदे हैं? क्या कहते हैं? द्रव्य जुदा है और गुण उसमें भरे है, ऐसा है क्या? अभी तक ऐसे ठीक है, हमको ठीक समझना है। यानी क्योंकि द्रव्य में से कभी गुण बाहर निकाले जा सकते हैं? द्रव्य से गुण जुदे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? उसका क्या कैसा संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध है। वो गुण उसके साथ अनन्यमय है, उससे जुदे नहीं हो सकते। जीव का ज्ञान गुण है तो हम कहेंगे जीव और ज्ञान एकमेक है, ज्ञानमय है, जीव ज्ञानमय है, ये जो ज्ञान है वो तो आत्मामय है, ऐसा हम कहो। इसको कहते अनन्यमय है। आधार कहेंगे जरूर, परंतु वो कैसा आधार है? अनन्य आधार है, उसके वो जुदा नहीं है, एक ही उसका क्षेत्र है। गुण का भी वही क्षेत्र है, द्रव्य का वही क्षेत्र है। यानी गुणों से ही तो द्रव्य बना है। द्रव्य क्या है? तो गुणमय ही है, अनंत गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि द्रव्य नाम का कोई कवरिंग है या कोई थैली है और उसके अंदर गुण भरे, ऐसा नहीं है। कल बात आई थी ना, यहाँ द्रव्य रखा और यहाँ गुण पर्याय रखे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य वहाँ जुदा रखेंगे तो द्रव्य नाम की कोई चीज ही नहीं रही, और गुण पर्याय को अलग रखा तो गुण पर्याय नाम का कुछ, वो तो द्रव्य वही हो गया ना, जो गुण पर्याय वही तो द्रव्य है। ख्याल में आई बात? यह अनन्यमय का अर्थ क्या है? उससे वो अन्य नहीं है।
देखो अनन्य का अर्थ कैसा बना, शब्द बना है आपको मालूम है? ये इसको क्या बोलते हैं? एक, और इसको अनेक, दस मत गिनो, अनेक, यानी अन एक यानी अनेक। वैसे यहाँ अनन्यपने, अन्यपने यानी जुदा जुदा, और अन अन्यपने यानी जुदा जुदा नहीं, एक मेक। तो द्रव्य कैसा है? अपने गुणों से और पर्याय से अनन्य है। ख्याल में है? फिर से चालू करते हैं। द्रव्यो खरेखर सहभावी गुणों ने तथा क्रमभावी पर्याय ने अनन्यपने आधारभूत छे, यानी एकमेक आधार, वही एकमेव आधार है। तेथी वर्ती चुकेला यानी हो गए है वो भूतकाल के वर्तता अने भविष्य में वर्तनारा भावों ना पर्यायों ना स्वरूपे परिणमता होवाने लीधे पांच अस्तिकायो अने परवर्तन लिंग काल ते छह द्रव्यो छे। भूत वर्तमान ने भावी भावो स्वरूपे परिणमता होवा थी तेवो काई अनित्य नथी, कारण के भूत वर्तमान ने भावी भाव रूप अवस्थाओं में पण प्रतिनियत पोत पोताना निश्चित स्वरूप ने नहीं छोड़ता हुआ थी ते वो नित्य छे। यानी क्या है, एकदम शॉर्ट में आपने को, द्रव्य कैसा है? नित्य परिणमते हुए नित्य कायम रहता है। कैसा है? नित्य परिणमता है लेकिन नित्य कायम है। ख्याल में? देखो बात ऐसी होती है, कभी कभी पर्यायों को द्रव्य के साथ जोड़कर बात करते हैं। हम आपसे पूछते हैं, सही उत्तर देने का है आपको, पूछो आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि, कोई बात, कोई भी बोलो ना। तो आपकी पर्याय सिर्फ मिथ्या दृष्टि है या पूरे मिथ्या दृष्टि हो? और तुम, यानी पर्याय जुदी रह गई और आप अलग रह गए, ऐसा है? ये सोचने का तरीका है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। इसलिए कि कभी कभी द्रव्य और पर्याय एक साथ ही है, ये यहाँ अनन्य भूत। तो आपको पूछा कि क्या बताएं कि आप सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि? तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ या मैं सम्यक दृष्टि हूँ? तो पूरा द्रव्य पर्याय सहित मैं सम्यक हूँ या मिथ्या हूँ, ऐसा लेना है। अभी यहाँ पर वही बात चल रही है ना। तो यहाँ क्या बात कर रहे थे कि ये सर्व द्रव्य कैसे हैं, नित्य परिणमते हुए नित्य कायम टिके हुए हैं।
यहाँ लिखा ना, देखो तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, भूत वर्तमान ने भावी भावो स्वरूपे, भावो स्वरूपे ने पर्याय रूपे परिणमता हुआ थी, यानी उस अवस्था रूप से परिणम नहीं होने पर भी तेओ कहीं अनित्य न थी। क्यों? कारण के भूत वर्तमान ने भावी भावरूप अवस्थाओं में पण प्रतिनियत यानी निश्चित स्वरूप ने नहीं छोड़ता हुआ थी तेओ नित्य छे, यानी परिणमन करते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो नित्य ही है। द्रव्य यहाँ पर्याय यदि ऐसा नहीं कहा, द्रव्य स्वयं ही अवस्था रूप से परिणमन रहे हैं, ऐसा होते हुए भी अपने निश्चित स्वरूप को नहीं छोड़ते, इसलिए वो नित्य ही है, परिणमते हुए भी नित्य है, ये कहना चाहते
हैं। काल पुद्गला दीना परिवर्तन नो हेतु होवा थी, यानी काल द्रव्य जो है वो पुद्गल आदि द्रव्यों के परिवर्तन यानी परिणमन में हेतु हुआ थी, तेमज पुद्गल आदि ना परिवर्तन द्वारा तेना पर्याय गम्य तथा जनाता हुआ थी, तेनो अस्थि कायों में समावेश करवामा आवे करवा अर्थे तेने परिवर्तन लिंग कहो। यानी परिवर्तन का चिन्ह है ऐसा बताए, लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। पुद्गलादि अस्तकायनु वर्णन करता तेमनु परिवर्तन परिणमन वर्णव्यु जोईए, अने तेमनु परिवर्तन वर्णवता ते परिणमन परिवर्तन मां निमित्तभूत पदार्थने कारणे अथवा ते परिवर्तन द्वारा जेना पर्याय व्यक्त थाय छे ते पदार्थने वर्णवो अस्थाने न गणाय। आ रीते पंचास्तिकायना वर्णन थी अंदर कारण वर्णन नो समावेश करवो अनुचित नथी, एम दर्शवा अर्थे आ गाथा सूत्रों में काल माटे परिवर्तन लिंग शब्द वापर्यो छे।
परिवर्तन लिंग शब्द से काल द्रव्य ही सूचित किया जा रहा है। वर्णन तो पांच अस्थिकायों का है, उन पांच अस्थिकायों का परिवर्तन भी हो रहा है, तो परिवर्तन में जो निमित्त है उस काल द्रव्य को भी यहाँ कहना अनुचित नहीं है। कोई प्रश्न करेगा ना, अस्थिकाय का वर्णन है, काल का नाम क्यों लिया? तो कहते वो परिवर्तनशील द्रव्य है, तो परिवर्तन लिंग ये काल का ही नाम बता दिया, परिवर्तन लिंग ने काल द्रव्य।
अस्थिकाय नु वर्णन मुख्य छे ने काल द्रव्य नु वर्णन गौण छे। काल अस्थिकाय नथी, काल अस्थिकाय केम नथी बेन?
बराबर,
देखो इतना बताना, वो एक प्रदेशी है और बहुप्रदेशी नहीं है,
और उसमें जो बताया ना कि उसमें स्कंद होने की योग्यता भी नहीं है, हाँ। जैसे परमाणु में है, ये जो यही बताना चाहते थे आप, स्निग्ध रुक्षता नहीं है इसलिए वो उसका स्कंद नहीं बन सकता, योग्यता भी नहीं है बनने की।
काल अस्थिकाय नथी पण ते द्रव्य छे। सेकंड लाइन, पांच अस्थिकाय पण द्रव्य छे ने काल पण द्रव्य छे, एम जगत मां छ द्रव्यो छे, पुद्गल वगैरह ना परिणमन ऊपर थी काल द्रव्य नु अनुमान थई शके छे। यहाँ बता रहे ना कि ये पहले तो बहुत नया था, अभी जीर्ण हो गया, तो काल उसकी अवस्था पलटी ना, तो ये बताते क्या कह रहे। देखो थर्ड लाइन, पुद्गल वगैरह ना परिणमन ऊपर थी काल द्रव्य नु अनुमान थई शके, समय काल द्रव्य नो एक परमाणु एक प्रदेश थी बीजा प्रदेश जाए तेटला वक्त ने एक समय कहे छे। ये क्या बताया, समझ में आया? चलो शांति को, हमने देखा था एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, वो कैसे देखा था कि ये जो निगोद जीव है वह निगोद जीव कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी है फिर भी अपने आंखों से कोई दूरबीन लगावे, मैग्नीफाइंग ग्लास लगावे, दिखता नहीं है। यानी देखो उसमें असंख्यात प्रदेश है, वो तो दिखने चाहिए कि नहीं? वो भी नहीं दिखते अपने को, अपने ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एक प्रदेश कितना सूक्ष्म होगा, छोटा होगा, ऐसा कहते हैं। सुई जो होती है ना अपने पास जो सिलाते हैं, उसका अग्रभाग हम जमीन पे टिकाए तो वहां भी असंख्यात प्रदेश है। तो एक प्रदेश कितना छोटा, अभी क्या बताते हैं दिखाने के लिए, एक प्रदेश और दो प्रदेश और ये तीन प्रदेश। तो एक पुद्गल परमाणु यहां से उठकर यहां तक जावे तो ये यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगे उसको एक समय कहते हैं। लेकिन पुद्गल में ऐसी ताकत है समझना, एक समय में एक प्रदेश भी गमन कर सकता है और फास्ट जावे तो 14 राज्यों गमन कर सकता है एक समय में। पुद्गल और जीव में ऐसी लायकात है, समझ में? देखो क्या कह रहे, देखो चौथी लाइन बहन को ना पहली बार सुन रहे हैं। अभी नई बात सुने तो जरा आश्चर्य लगता है, पर ये तो वास्तविकता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। यानी हमको लगता है कि हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा, अरे इसमें क्रियावती शक्ति वो वहां से उठकर यहाँ आती है। अभी देखो आप रास्ते में जा रहे हैं और बाजू में बस गई, इतनी जोर से गई कि उधर रास्ते ऊपर का जो धुराला है ना, कचरा पेपर ये वो कुछ भी, वो उड़ के अपने आंख पे आया। तो हम किसको गाली देंगे? बस वाले को, क्या गाड़ी चलाता है समझता नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ बोलने का बोल दिया। पर पहले तो पहले उस ड्राइवर ने वो कचरा उड़ाया नहीं, वो बस ने वो कचरा उड़ाया नहीं है, वो जो कचरा उड़ाया अपने क्रियावती शक्ति से उड़ाया। अब वो तीनों एट ए टाइम हो रहा है और अपने को लगता है कि रैशली उसने गाड़ी चलाई इसलिए ऐसा हुआ। यानी वो प्रत्येक पुद्गल में ऐसा परिणमन करने की योग्यता है। स्लो में स्लो जावे तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जावे उसको एक समय लगेगा, और एकदम शीघ्रता से अति शीघ्रता से भी गमन करेगा तो 14 राज्यों। यानी देखो जो वायु का एक जीव है उसका मरण हो गया और उसको सिद्ध शिला के ऊपर के वायु का एक में जन्मना है, सीधे ही सीधा एक समय में जा सकता है। और वो जीव जाएगा तो साथ में उसके कर्म भी जाएंगे कि नहीं? तो कर्म कौन है? पुद्गल है, ख्याल में है ऐसा? देखो यहाँ क्या लिखते हैं, चौथी लाइन में हम पढ़ रहे हैं, एक परमाणु मिल गया, एक प्रदेश थी बीजा प्रदेश से जाए तेटला वक्त ने एक समय कहे छे, ते समय काल द्रव्य नी पर्याय छे, नाना मा नाना काल नु माप केटलू। के एक परमाणु एक प्रदेश थी बीजा प्रदेश से जाए तेटला वक्त मा काल नी पर्याय थई जाए छे। काल नी पर्याय नु माप एक प्रदेश में आवी जाए छे तो ते पर्याय नु धरना नु द्रव्य पन एक प्रदेश में पूरु थई जाए छे। पर्याय ऊपर थी पर्यायवान द्रव्य सिद्ध थई जाए छे। पर्यायवान यानी क्या? द्रव्य पर्याय, और वो पर्याय को धारण करने वाला पर्यायवान। तो कहते पर्याय ऊपर थी पर्यायवान, आगे लिखा है द्रव्य सिद्ध थई जाए छे। यानी एक काल एक समय का काल है तो वो तो उसकी पर्याय है, तो वो द्रव्य को भी सिद्ध करता है। एटले काल एक प्रदेशी छे, पांच द्रव्यो काया काय वाला छे ने काल द्रव्य अकाय छे।
अब ये प्रश्न जो बताए ना, एक प्रदेश से थे बीजे प्रदेश से जाए, यहाँ एक शब्द ऐसा आता है ग्रंथों में मंद गति से, नहीं तो क्या मानना पड़ेगा, एक समय में वो चौधराजू भी जाता है ना, तो उसके चौधराजी जितने खंड नहीं पड़ते समय के, नहीं तो कोई समझेगा वो जितने भेद पड़ेंगे उसको समय, ऐसा नहीं है। मंद गति से जाता है या तीव्र गति से जाता, तीव्र गति से 14 राजू जाते एक समय में, मंद गति से एक प्रदेश लांग कर आगे गया दूसरे। पुद्गल क्यों नहीं जाएगा, पुद्गल में क्रियावती शक्ति है कि नहीं?
देखो क्रियावती शक्ति का कार्य गति रूप और स्थिति रूप परिणाम ने कहा है। अब ये घड़ी है, घड़ी कौन सा है, पुद्गल द्रव्य है, एक जगह स्थित है, तो उसकी जो गति रूप जो थी वो परिणाम नहीं हो रहा है, स्थिति रूप हो रहा है। इसको उठा के इधर रख दिया तो यहां से यहां आया, तो आया तो अपने स्वयं के गति रूप से क्रियावती शक्ति के कारण से आया, और अभी रुका है तो स्थिति रूप से रुका है। अभी ये शरीर भी यहाँ एक जगह एक घंटे से बैठा है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, स्थिति रूप। ये क्रियावती शक्ति नाम का गुण सिद्धों में भी है, सिद्धा भी एक जगह पे स्थित है तो उनका वह स्थिति रूप परिणाम चल रहा है, और यहाँ कोई केवली भगवान मनुष्य क्षेत्र में है तो 14वां गुणस्थान पूरा हो गया तो एक समय में सिद्धावस्था हुई, तो एक समय में वो वहां पहुंचे तो अपने क्रियावती शक्ति के कारण से पहुंचे। अभी विषांतर मत करो, ये लंबी बात कराते हैं। किसी के घर में मरण हो गया किसी का, तो वो जो जिसको अपन मुर्दा कहते हैं, मृत कलेवर, वो यहाँ से स्मशान तक जावे तो कैसा जाता है, ऐसा इसका पूछना।
खुद जाता है कि दूसरे लोग उठा के ले जाता है कुछ? उसमें योग्यता है कि नहीं?
देखो देखो वो जो शरीर है ना बेन, सुनो 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 देखो,
प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो 4 लोगों ने मुर्दे को उठाए कहाँ से आए, ये कहते हैं, ये इन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत बार डंडे 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 लगा लगा कर सीखा है। तो पुद्गल जा सकता है? हाँ अभी पुद्गल को
देखो, हम ऐसा ही मानते हैं कि 4 आदमी जब तक नहीं उठाते वो उठता नहीं, लेकिन उस शरीर जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, उसमें प्रत्येक परमाणु में क्रियावती शक्ति है, वो क्रियावती शक्ति यहाँ से वहाँ क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का समय आवे तो 4 आदमी निमित्त रूप से होंगे। बॉडी जा रहे हैं अपनी योग्यता से।
आपके ये पुद्गल कैसे जाता है, यहाँ वो रॉकेट छोड़ा और उधर गया, उसमें कोई आदमी नहीं है ना, उसके अंदर कैसे गया? हाँ अभी आया। देखो हम निमित्त की तरफ देखते हैं, निमित्त नहीं कैसा जाएगा, निमित्त नहीं कैसा जाएगा, ऐसा लगता है।
यहाँ तो ऐसे एक एक मंत्र है, हमारे गुरु हमको सिखाते थे नेमचंद भाई रखेल वाले, कि जैसे सांप होता है, सांप के सामने बीन बजावे तो सांप ऐसा 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 डोलते, हाँ ऐसे एक एक जिनेंद्र भगवान के जो तत्व है वो तत्व अगर आपको समझाएंगे तो हाँ आप भी ऐसा ऐसा डोलेंगे, अरे ऐसा ऐसा ऐसा, मिथ्यात्व रूपी पुतड़ू उड़ जावे, ऐसी बात है। टाइम किसको है ख्याल में है ना, ये तकलीफ है। आज 6 द्रव्यो पोताना गुण पर्याय थी, पूर्वे परिणम्या छे, वर्तमान में परिणमे छे, ने भविष्य में परिणम छे, त्रणे काले પોતાના ગુણ પર્યાયોથી જે પરિણમનશીલ છે તેનું નામ દ્રવ્ય છે. કોઈ પણ દ્રવ્યની પર્યાય પરને લીધે થઈ નથી, થતી નથી ને થશે નહીં. આ ગયા ના બાદ અભી મુર્દા કૈસા યહાં સે ગયા તો આપણે સ્વયં કે યોગ્યતા સે ગયા. આત્મા વિકારપણે પરિણમ્યો તે પોતાના ગુણ પર્યાયથી જ પરિણમ્યો છે, પરને લીધે નહીં. આમ સમજે તો અર્થ સમયને સમજો કહેવાય, પરંતુ તેનું જ ભાવ અને તેનું જ ભાવજ્ઞાન સાચું હોય. કોઈ પણ દ્રવ્ય બીજાના ગુણ પર્યાયને લીધે પરિણમતું નથી, પણ ત્રણેય કાળ પોતાના સ્વભાવથી જ પરિણમે છે. આવો અર્થ સમયનો સ્વભાવ છે, તેવું જ જ્ઞાન સમય જાણે છે ને તેવું જ વાણીમાં આવે છે. આ રીતે પંચાસ્તિકાયમાંથી પણ વિતરાગતા જ નીકળે છે, વિતરાગ ભાવ જ નીકળે છે. કોઈ પણ સિદ્ધાંત લ્યો તેમાંથી વિતરાગ ભાવનું જ તાત્પર્ય નીકળે. અહીં રૂકેંગે આપણે. જાવણી કે જ્ઞાન દે સુજે લોકાનું.